मुश्किल अल्फाज की वजाहत। सूरत निसा आयत नंबर 71 जो है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु खुज़ू हिज़्रकुम। तो लफ्ज़ है हिज़्रकुम, हा ज़ाल वा, हज़र या हिज़्र, ये इसके मानी होते हैं किसी खतरा और आफत से बचने के। और इसी मफहूम से तरक्की करके ये लफ्ज इन चीजों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा जो जंग में दुश्मन के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन कोई जिरा पहन ले, कोई खुद उसके पास हो या सुपर है, या इसी तरह जो भी डिफेंड करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, दफाई आलात हैं। और इसी तरह इसका इस्तेमाल जो है असलहे पर भी होता है कि वो जो हम हमले के लिए काम में आता है, तीर है, तलवार है, तुफंग है। तो हिज़्रकुम से मुराद क्या है कि जो भी मादी तैयारी हो सकती है वो होनी चाहिए। फन फिरू, नफारा। नफारा जो है इसके लफ्जी मानी क्या है, निकलना। और जैसे नफरत है, नफरत में क्या होता है, जब किसी को किसी से नफरत होती है तो वो भी दूर भाग रहा होता है, उसे निकल रहा होता है ना, उसे हट रहा होता है। तो निकलो। सुबातिन, साबाता, ये साबाता सुबातन की जमा है। और सुबातन यानी ये वो ता जो जुड़कर आती है, बड़ी ता नहीं, तो सुबातन की सुबात जमा है। और सुबात के मानी होते हैं सवारों की जमात के, सवारों की जमात को भी कहते हैं। और इसके अलावा ऐसे दस्तों को कहते हैं जो मजबूत बनकर मुकाबले के लिए अलग अलग निकलते हैं। क्यों? यानी अलग अलग दस्तों और टुकड़ियों की शक्ल में, जैसे गोरीला होते हैं ना, गोरीला जंग, तो उस अंदाज में कि थोड़े थोड़े बनकर निकलना। सुबात इनके ऑपोजिट यहां पर आया है जमीआ। जमीआ यानी जमा होकर एक जमात बनकर निकलना। और सुबात इनका मतलब क्या है, हाँ, हिफाजती दस्ते, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स में निकलना। तो ये सवारों की जमात भी इसके मानी है साबात ता के। सुबात जो है ये सुबात उनकी जमा है, और सुबत के मानी है सवारों की जमात, यानी घुड़सवार, उस जमाने में घुड़सवार थे, आज के दौर में मौके की मुनासिबत से। और अरब में उस वक्त क्या हालात थे कि एक तो बकायदा फौज की शक्ल में हमला होता था, जैसे गजवा बदर है, उहद है, और दूसरा ये तरीका था कि गोरीला जंग होती थी कि टुकड़ियों में और दस्तों की शक्ल में छोटे छोटे ग्रुप निकलते थे और दुश्मन पर जाकर हमला करते थे। तो सुबात के लफ्ज़ से यही तरीका जो है इसकी तरफ इशारा किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरिये भी भेजे, छोटे छोटे ग्रुप भी भेजे, और उसके साथ जो है वो बड़े भी भेजे। आयत 72 में है, वह इन नमिन कुम लमल्ला युबत्ती अन्ना। तो युबत्ती अन्ना ये लफ्ज़ जो है ये खास है, और इसका रूटवर्ड है बा तोए हमजा, बा तोए हमजा, बता। और इसके मानी है वो तबका जो पीछे हटता है, देर लगाता है, देर लगवाता है, हिम्मतें पस्त करने की पूरी पूरी कोशिश करता है और करता रहता है। अगर आप गौर करें तो लयुबत्ती अन्ना है, और यहां पर ताकीद दर ताकीद के मानी पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में लाम है, आखिर में नून है, लाम भी लामे ताकीद है, नून पर शद है, तो जरूर ब जरूर, यकीनन यकीनन जिहाद से पीछे हटना, देर लगाना और ढीला पड़ना, सुस्त पड़ना, पीछे रह जाना, दूसरों को भी सुस्त करना, फलां ने फलां को भी सुस्त और पस्त हिम्मत कर दिया। तो रूट वर्ड आपने असल में इसका याद रखना है बा तोए और हमजा। फिर आयत नंबर 73 है, और इसमें लफ्ज है मवद्दतुन, और ये आपको पहले भी पढ़ चुकी है। क्या है इसका रूट वर्ड? शाबाश, वो दाल दाल, करीबी ताल्लुक, प्यार और मोहब्बत के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर है आयत 74, और इसमें अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो कि नया हो, इल्ला ये कि आपसे पूछ लिया जाए कि यशरूना, यशरूना जो है इसकी खास बात क्या है? शाबाश, ये जविल अजदाद में से है कि बयक वक्त दो मानी देता है। एक मानी क्या है कि खरीदना भी और बेचना भी, और इसका रूट वर्ड भी आपको आता ही है, क्या है? शीन रा या, ये इसका रूट वर्ड है। फिर आप आगे चलिए, आयत 75 है, और आयत 75 में अगर आप देखें तो आपको जो अल्फाज मिलते हैं क्या हैं, ये बेशक ये आपको आता है लेकिन मोटा सा नजर आ रहा है, वल मुस्तदफीना बड़ा सा नजर आ रहा है, वल मुस्तदफीना दाद ऐन फा, तो इसका जो है ये रूट वर्ड है, और इसके मानी क्या है? किसी को कमजोर समझना। क्यों समझना? क्योंकि मीम सीन ता शुरू में आ गई ना, के कमजोर समझना, वल मुस्तदफीना के वो लोग जो के कमजोर हैं, मुस्तदफीना जोर से है। फिर इसके बाद जो है अखरिजना, अखरिजना का रूट वर्ड तो है खाराजीम खराजा से है, और इसके मानी है कि खराजा निकलना और अखरिज, यहाँ पे असल में ऑर्डर का सीगा है, तो यहाँ पे अखरिज निकाल, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता ही कि खराजा और अखराजा, दखला और हाँ, तो मानी में थोड़ा सा जो है वो फर्क पैदा हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखें करिया, करिया जो है ये लफ्ज़ पहले भी पढ़ चुकी हैं, क्या है इसका मानी? बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है, गांव को भी कहते हैं, विलेज को भी, और कहते हैं जमा करना होता है इसके लफ्जी मानी, तो क्योंकि बस्ती या गांव जो होता है वहां पे पहले लोग जमा होते हैं, तो फिर एक या दो या तीन और फिर और लोग जमा होते चले जाते हैं, इकट्ठा करना जमा करना। फिर आप आगे चलें तो यहाँ पे वलियन भी आया है और नसीरा भी आया है, तो वलियन जो है, वलियन जो है इसका रूट वर्ड क्या है और नसीरा? शाबाश, तो दोनों लफ्ज आपको आते हैं और दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वली कौन होता है? दोस्त होता है, हाँ हमायती होता है, और दूसरा जो होता है नसीरा मददगार, नुसरत से है कि मदद करना या कोई मदद करे। फिर इसके बाद आप आगे चलिए, आयत 76 है, इसमें कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो, सारे आप पहले पढ़ चुकी हैं। हाँ ये कैद, कैद भी आपने पढ़ी लिया, वैसे किसे कहते हैं? चाल को, ट्रिक को कहते हैं, और खुफिया तदबीर हो उसके लिए खास तौर पर ये इस्तेमाल होता है। आयत 77 में है कुफू काफाफा, इसके हमला रोकना, हमला रोकना, और कफ असल में कहते हैं किसको है? हाथ की हथेली को कहते हैं, और जैसे आप कहते हैं ना मेरे बाजू का माप मेजरमेंट ले लें, तो कफ तक ले लें, तो है ना, तो काफाफा हाथ की हथेली को कहते हैं, और बाजू का भी होता है कि आप पर को कुछ कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप आपकी हाथ की हथेलियों से अपना तहफ़ करते हैं, दिफा करते हैं, तो उसके लिए भी ये जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कुफू ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, यानी ऑर्डर का सीगा है कि तुम रोको, ठीक है, मना करो, रोको, और हमला करने से रुक जाओ या रोको, ऐदियाकुम अपने हाथों को। फिर सूरत निसा आयत 77 जो है इसमें आप देखें तो यख्शौना खशियती खशियतन, ये तीन एक ही फैमिली के लफ्ज हैं, और ये खाशीन या खशियत है ना, और आपको पता ही है कि खशियत के मानी क्या है? हाँ, किसी के रोग की वजह से डर जाना और दब जाना, हैबत की कैफियत, ये जब अंदरूनी दिल में तारी होती है तो फिर जिस्म पर भी आ जाती है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अशद्दा, अशद्दा क्या है? इसम तफजील है, इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे एक होता है गुड और एक होता है बेटर, और फिर इनसे सबसे ऊपर क्या है? बेस्ट, तो ये बेस्ट के मानी देता है, अशद्दू यानी ज्यादा ज्यादा, इससे भी बढ़कर। फिर आप देखें आयत 77 है और वहां पे लफ्ज है फतीला, फतीला जो है इसके मानी क्या है? हाँ शाबाश, खजूर की गुठली में जब आप खजूर को खाएं तो गुठली को आप देखें तो उसमें उसका वो जो होती है सुराख सा, उसमें जो है एक बारीक सा धागा सा निकलता है। तो असल में ये उसकी बारीकी की तरफ या उसकी बहुत, जैसे कोई चीज बहुत हकीर है, बहुत थोड़ी सी है, तो उसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया है, यानी जर्रा बराबर। मकसूद क्या है इस बात से बताना कि बहुत छोटी सी चीज है, जर्रा बराबर, बहुत ही छोटी सी चीज, फतीला। फिर है आयत 78 है, और युद्ध रिक्कुम दाल रा काफ दरक, इसका हमने इसी से मिलता हुआ एक और लफ्ज पढ़ा था, दरज। तो दरक और दरज में क्या फर्क था? दरज क्या होता है? दरज ऊपर सीढ़ियां चढ़ना और दरक नीचे उतरना। तो दरज जो है वो जन्नत के मंजिलों को तय करने के लिए, दर्जों पर ऊपर चढ़ने के लिए आता है, और दरक जहन्नुम की गहराइयों में जाने के लिए। तो वैसे दरक के मानी क्या होते हैं कि पा लेना, आ पकड़ना, इदराक कि तुझे पकड़ लेगी, आ जाएगी, ले लेगी, कौन? मौत। बुरूज, बुरूज जो है ये बुर्ज की जमा है। इसके वैसे लफ्जी मानी होते हैं किसी नुमाया और वाजे चीज के लिए आता है ये। बुरूज किसे कहते हैं? कोई चीज जो बड़ी वाजे हो, नुमाया हो। लेकिन फिर इसी से ये लफ्ज जो है वो तरक्की करके बुलंद इमारतों और कलों के लिए भी मारूफ हो गया। और इसके साथ अगर आप सिफ्त देखें तो मुशैयदा इनकी सिफ्त है, मुशैयदा शीन या दाल, किसी इमारत को पुख्ता और मजबूत बनाना। मतलब ये सिफ्त जो है ये इस्तेहकाम के लिए भी इस्तेमाल होती है किसी इमारत की, और उसके साथ साथ उसकी बुलंदी के लिए भी, कि इमारत जो है वो मजबूत भी है और पुख्ता भी है और मुस्तहकम भी है और उसके साथ साथ बुलंद भी है। फिर अगर आप देखें तो इसी आयत में सैयातुन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, साथ ही हसनतुन भी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। फिर आयत नंबर 79 को अगर आप देखें, कोई भी लफ्ज नया नहीं है। 80 को देखें तो सारे आपने पहले से पढ़े हुए हैं। फिर आप 81 पर आ जाइए, बराजू। बराजू जो है बाराजा, खुले खुले वसी मैदान में निकलना, सामने आना। व बुर्रिजत जहीम उली मन यरा, और जब जहन्नुम को खोल कर रख दिया जाएगा हर देखने वाली आंख के सामने, खुली वाजे होगी जहन्नुम, अभी तो छुपी हुई है ना, नजर नहीं आती। तो वैसे इसके लफ्जी मानी क्या है कि निकलना। और बैयता, बैयता जो है बा याता, रात गुजारना, रात के वक्त कोई मशवरा या मीटिंग करना, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, रात गुजारना और रात के वक्त जो है वो कोई मशवरा करना। और बैत, बैत घर को भी कहते हैं ना, ये इंसान का रात का ठिकाना होता है। बैत में आप क्या करते हैं? रात जिस घर में गुजारी जाए उसको बैत कहते हैं। और बैयता साथ ही यहाँ पर जो शब्द आ गई, तो रात को चोरी चोरी मशवरा करना, चुपके से मशवरा करना, कोई मीटिंग करना। और युबैयतून जो है ये जमा के लिए है, फआरिद ऐन रादाद, एराज करना, पहलू तही करना। फिर है आयत 82, और ये तदब्बरूना, तदब्बुर दाल बारा दुबुर से है, और दुबुर किसे कहते हैं? पीठ को कहते हैं। और पीठ आप देखें कि हमारे जिस्म की जैसे एक बुनियाद है और बड़ी अहम चीज है, तो तदब्बुर के मानी भी क्या होते हैं कि किसी मामले के अंजाम पर नजर रखते हुए गौर व फिक्र करना, किसी मामले के अंजाम पर नजर रखते हुए गौर व फिक्र करना। जैसे पीठ क्या है? तय है ना, गहराई है ना, एक चीज गहरी है। तो किसी भी मामले के कि गहराई पर नजर रखते हुए, उसके अंजाम पर नजर रखते हुए गौर व फिक्र करना। फिर इसी से तदबीर भी है, इसी से मुदब्बिर है। अब तदबीर क्या होती है? मसलन आप किसी जब मामले पर गौर करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो फिर मुझे ये तदबीर कर लेनी चाहिए। तो आप मामले पर गौर करते हैं, उसके नतायज पर, उसकी गहराई तक पहुंचते हैं। तो ये तदब्बरून जो है ये इसके जो है वो मानी है। आयत नंबर 83 में लफ्ज है अजाऊ, और ये जो लफ्ज है इसका रूपट है जाल या ऐन। जाल या ऐन किसी खबर को फैलाना, उसकी तशहीर करना, किसी लफ्ज को फैलाना उसकी तशहीर करना, तशहीर करना, मशहूर करना। फिर 83 में है, आप थोड़ा और आगे चलती हैं, तो यस्तंबितू ना हो। हाँ, यस्तंबितू ना हो इसका रूटवर्ड है, आपको क्या लग रहा है? बा से नहीं, नून बाता। हाँ, नून बाता ये इसका रूटवर्ड है, नबता। और इसके असल में मानी है कि कुएं से पानी निकालना। कुएं से पानी निकालना, और इसके साथ ही अरबी जबान में जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद ये होता है कि कुएं की तह से पानी निकालना, और कहते हैं कुआं खोदने में जो पानी पहली मर्तबा निकलता है उसको माए मुस्तंबत कहते हैं। कुआं जब खोदा जाता है तो शुरू में फौरन जो पानी निकलता है, अब आप देखें कि बाद में तो पानी वो है ही, फिर निकला हुआ है ना, तो खोद खोद के आप बात नीचे तक आप गए तो पानी आपको मिला। तो इससे मुराद ये है कि किसी बात की तह तक पहुंचकर उसकी हकीकत मालूम करना, किसी बात की गहराई में जाकर नतीजा अखज करना। लफ्जी मानी फिर क्या है कि कुआं खोदकर इससे पानी निकालना, किसी पोशीदा चीज को जाहिर करना। इसी मफहूम से तरक्की करके ये लफ्ज जो है, किसी बात की तय तक पहुंचना, इसकी हकीकत को पाना, उसकी गहराई को पाना, और फिर उससे सही हकीकत या फिर उससे सही नतीजा अखज करना, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आयत 84 में लफ्ज है हर्रिद, हा रा द्वाद, इसके मानी है टू मोटिवेट, तरगीब देना, हलाकत से बचाने के लिए किसी को उभारना, हलाकत से बचाने के लिए किसी को उभारना, उकसाना। फिर दोबारा आ गया ये कुफा, या पढ़ी चुकी हैं, बाशा ये भी आप पढ़ चुकी हैं, ये लफ्ज जो है वो हाँ जंग के लिए भी आता है, भूख के लिए भी आता है, मुसीबत वगैरह के लिए भी आता है ये, हाँ ताकत के लिए भी। और आगे लफ्ज है तनकीला, तनकीला नून काफ लाम, इबरतनाक सजा देने के लिहाज से, जैसे नकालुन बेड़ी जंजीर लगाम के लोहे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जो बेड़ियां जंजीरें होती है ना। और आप देखें कि इबरतनाक सजा इसको क्यों कहते हैं, अनकाल या तनकीला या निकाल, क्योंकि आम कोई मुजरिम होता है ना तो अगर वो जा रहा हो तो पता नहीं चलता कि ये मुजरिम है, लेकिन जब उसको बेड़ियां पहनाई हुई जंजीरें, हर देखने वाला कहता है कि पता नहीं इसने क्या किया है, तो इबरत, दुनिया उनको देख रही है। और मैं यशफा, शीन फा ऐन, ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी क्या होते हैं?
एक राय पर दूसरी राय को साथ मिला देना, एक
हाँ
बात के साथ दूसरी बात मिलाना।
सही, कि इसके मानी ये होते हैं अरबी जबान में के जोड़े के, इसका ऑपोजिट होता है वितर, वतर। तो शफात के मानी क्या होते हैं कि कोई किसी की, जैसे किसी की आप सिफारिश कर रहे हैं तो उसकी एक राय है, उसकी राय के साथ आप अपनी जब राय को मिलाते हैं तो दो हो गई, दो बातें हो गई। तो क्या किया आपने कि कमजोर जो उसकी राय थी, अपनी बात जब आपने उसकी राय के साथ मिलाई तो कुव्वत दे दी, उसको मजबूत कर दिया। वो अकेला शख्स था और अब उसको आप उसके साथ मिले तो वो जोड़ा बन गया, उसकी राय एक राय थी, आपकी राय मिली तो वो इकट्ठी हो गई। और यहां पे अगर आप गौर करें तो ये बात भी अहम है कि शफातन आई है, फिर हसनतन आई है। अब आगे देखें, शफातन है फिर सैयातन है, तो अच्छी सिफारिश बुरी सिफारिश, तो जो अच्छी सिफारिश है उसके लिए नसीबुन का लफ्ज आया है, और जो बुरी सिफारिश है उसके लिए जो है वो किफलुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो नसीबुन और किफल जो है इसमें क्या फर्क है? तो नसीब का जो लफ्ज है कहते हैं कि ये यानी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा। तो जो किफल है इसमें क्या है कि दोनों के मानी लुगत में अगर देखें तो दोनों के मानी क्या है, किफल के हाँ हिस्से के हैं, किसी चीज का एक हिस्सा। लेकिन उर्फ़े आम में नसीब अच्छे हिस्से के लिए बोला जाता है और किफल का लफ्ज अक्सर बुरे हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे कहीं कहीं अच्छे हिस्से के लिए भी लफ्ज किफल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि ज्यादातर ऐसा होता है, कभी कभी उससे जो है वो हट कर भी हो जाता है। وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ ہر چیز پر مقیت ہے, مقیت قوت سے ہے, کاف و تا, اور اس کے معنی ہے کسی قوت یعنی خوراک کا بندوبست کرنا, نگہداشت کرنا, نظر رکھنا, طاقت قدرت نظر رکھنا, ہر چیز کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.